संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। जगतगुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री श्री पंचतत्व भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराण की जय। श्री श्री राधा माधव जी राधा गोपाल जी की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। संबित वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये श्रीनीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम श्री जगन्नाथाय ते नमः। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्रिशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठाकुर जी की प्रभु जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की महती कृपा से सभी आचार्य परंपरा और प्रभुपाद जी की महती कृपा से हम लोग सुन रहे हैं जगन्नाथ जी की कथा सुन रहे हैं। जगन्नाथ जी कथा हम सुन रहे थे। जगन्नाथ जी किससे प्राकट हुए श्री क्षेत्र में, तो पहले इंद्रद्युम्न महाराज के मन में ठाकुर जी की दया से की भावना आए कि मैं ठाकुर जी को साक्षात दर्शन करूंगा। ये बहुत बड़ा भाव इंद्रद्युम्न महाराज का था। कलयुग में ये तो सत्य युग की बात है, सत्य युग में सभी युग में जो भगवान के भक्त होते हैं भक्ति का ये परम फल चरम फल भी है साक्षात दर्शन। अंतिम फल है भगवान को साक्षात दर्शन करना। और निष्काम भावना से हम साधन भजन करने से ठाकुर जी की दया से होते हैं, वो ठाकुर जी दर्शन दे देते हैं। कल हम सुन रहे थे कैसे इंद्रद्युम्न महाराज ने गए और नीलाद्री पर्वत पर जब पहुंचने लगे तो विश्वाभूषण ने उनका जो पार्षद लोग थे उनका जो लोग थे सबर लोग थे सब मिलजुल कर ये निष्पत्ति की कि राजा शायद इंद्रद्युम्न आए हैं हमारा नीलमाधव को लेकर चला जाएगा। इसको ममता बोलते हैं। ठाकुर जी से सेवा करना ठाकुर जी से अपनापन करना ये ममता होता है। सेवा ऐसे होता है जिसे आपका बेटा है आपका बेटी है इसे ममता है। कोई मां जी को पिताजी को इसे इंडिया में कोई ट्रेडिशन नहीं को उनको ट्रेनिंग दिया जाता है तुम्हारा बच्चा को ममता करो। ये ममता उमड़ आती भगवान की सेवा ऐसा होता है। सेवा करने के लिए तो सबर जाती खाए ट्रैवल कष्ट का विश्वाभूषण लेकिन इतना वो पागल हो गए थे कि मैं सेवा किसको दूसरा किसको सेवा नहीं दूंगा, मैं ही सेवा करूं। मेरा इच्छा है कि ये राजा जो इंद्रदुम्न आ रहा है ना, वो शायद ठाकुर जी को ले जाए। सेवा में कितना सुख था, सेवा में जिसको सुख नहीं मिलता है उनको कथा में भी सुख नहीं मिलेगा, जप में भी सुख नहीं मिलेगा। हम सोचते हैं ना, मैं इतना वाला जप करूंगा, तुम कितना भी करो ये अनर्थ रहेगा। जिसका तुम नाम कर रहे हो वो अगर प्रसन्न नहीं है तो नाम करना मुश्किल है। जिसका सेवा करने का भाव नहीं है, ठाकुर जी का सेवा करने का भाव नहीं है, उन लोग के लिए भजन करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि भक्ति योग में तीन मिलजुल कर चलता है, तीनों क्या क्या, कायिक वाचिक और मानसिक, तीनों सेवा करना है। शरीर के माध्यम से हमको सेवा करना है, जल लाना है, मंदिर साफ करना है, ठाकुर जी का सेवा करना है, फूलमाला बनाना है, कायिक सेवा जरूरत है। तीनों मिलजुल कर फल देते हैं, साक्षात्कार ठाकुर जी का दर्शन होता है। और बातचीत जिसको बोलते हैं, जिसे हम भगवान के नाम कीर्तन कर रहे हैं, कथा बोल रहे हैं, ये सेवा है। कभी उपदेश नहीं समझना चाहिए, जिसे हम प्रवचन देते हैं, इसका मतलब नहीं मैं आप लोग को उपदेश दे रहा हूं, ये एक सेवा हम कर रहे हैं हमारे इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए, शरीर में ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी की भक्ति को प्रकट करने के लिए। ये उपदेश नहीं है। कभी कोई आचार्य कभी ये नहीं सोचते थे कि भगवान की कथा बोलना दूसरे को ये उपदेश है। आजकल एक भावना हो गया, मैं प्रीचर बनूंगा। हम क्या प्रीचर बनेंगे, खुद को पहले प्रीचिंग करो, पहले खुद को प्रीचिंग करो तब दूसरे को हम प्रीचिंग करेंगे। प्रीचिंग का मतलब ये नहीं दूसरे को उपदेश देना, नहीं, खुद का शोधन करना। हम भगवान की लीला की चर्चा, भागवत सुनते हैं, बोलते हैं, क्यों करते हैं, खुद का शुद्ध करने के लिए और मन ठाकुर जी से लगने के लिए। और सबसे बड़ा चीज क्या आपको पता है, टाइम फैक्टर जो होता है ना, बहुत इन्फ्लुएंसर होता है, प्रभावशाली होता है काल। और भगवान की कथा बोलने से, सुनने से काल टाइम जो है ना, वो सही सदुपयोग होता है, सही काम पर लगता है। इसको काल क्षेपण बोलते हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। गोविंद, तो हम लोग को ये आचार्य लोग से सीखना है। देखो सेवा करने के लिए कितना वो तरस रहे थे राजा। मैं बोल रहा था ना, तीनों मिलजुल कर भक्ति में फल देते हैं। कायिक सेवा, शरीर के माध्यम से हमको सेवा करना है। कोई भी डिवोटीज है ना, वो भक्त बनना चाहते हैं ना, उस शरीर के माध्यम से सेवा करना है। और वाचिक नाम कीर्तन, कथा कीर्तन, और मानसिक दोनों, कायिक और वाचिक, जब सुस्त होता है, सुस्त मतलब कंप्लीट हो जाता है, इसमें ठाकुर जी खुश हो जाता है, तब मानसिक सेवा होता है। मानसिक सेवा मतलब भगवान की चिंतन, सुख की चिंतन। इसे कोई स्पेकुलेशन नहीं है। आजकल जैसे ट्रेनिंग देते हैं ना, तुम मन में चिंता करो, तुम गोपी हो गए हो, जो तुम मन में खा सकते हो क्या, तुम मन में भोजन कर सकते हो, तुमको मन में सुख मिल रहा है। दूसरे किसी वस्तु की सिवा तुमको अगर मन में सुख मिल रहा है तो तुम मन में कृष्ण को सुखी कर सकते हो। तुमको भोजन चाहिए, पत्नी चाहिए, पैसा चाहिए, तब तो सुख मिलता है। बाहर का चीज से तुम्हारा मन को सुख मिलता है। जब मन को बाहर का चीज जरूरत नहीं है, सिर्फ कृष्ण सुख, तब तो कृष्ण का चिंतन हो सकता है। ये छोटा काम नहीं है, पहले शारीरिक और वाचिक। इसलिए देखिए गोस्वामी लोग, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, वो डेटी वर्शिप कर रहे थे। आजकल किसको बोलो ठाकुर जी का सेवा करो, वो बोलते हैं क्या, मुझे ब्रिजिंग करना है। आजकल कोई ठाकुर जी की सेवा करने के लिए कोई किसका इच्छा नहीं। आप देखिए गोस्वामी लोग क्या करते थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सब गोस्वामी लोग का ठाकुर जी खुद सेवा कर रहे थे, खुद खाना पका रहे थे, भगवान के लिए भोग बना रहे थे, अर्पण कर रहे थे। आजकल ये भाव घटता जा रहा है, लेकिन हमको सीखना है। जगन्नाथ जी का वो भक्त है, इस सबर है, लेकिन वो राजा से अभी फाइटिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए, ये मेरा ठाकुर जी को ले जाएगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। जब युद्ध शुरू होने के लिए तैयार हो गए दोनों तरफ से, क्योंकि इंद्रदुम्न महाराज का भी मिनिस्टर लोग थे, सैनिक लोग थे, उनका सबर यातिका लोग भी थे, दोनों में आपस में झगड़ा शुरू हो गया, तब ठाकुर जी ने बोलने लगे, आकाशवाणी होने लगे, फाइटिंग क्यों लग रहे हो? ठाकुर जी तब बोले, विश्वास अभी तुम इतना दिन सेवा किए हो इन नीलमाधव स्वरूप को, लेकिन अब तुमको सेवा नहीं मिलेगा। अभी मेरा भक्त इंद्रदमन है ना, उनको सेवा करने के लिए मैं कोई सुजग में देता हूं, मेरा इच्छा यही है कि वो कुछ दिन सेवा करें। अभी टाइम हो गया ना, ठाकुर जी 50 ईयर्स ब्रह्मा जी का, जो 50 साल वो नीलमाधव लीला करते हैं और जो 50 साल वो जगन्नाथ जी की लीला करते हैं। ठाकुर जी खुद बोल दिए कि अभी तुमसे मुझे मेरा प्रेम है तुम्हारे ऊपर, लेकिन अभी सेवा तो करेंगे इंद्रदमन। सेवा का एक अभिलाष होता है, आप सुने हैं ना भजन राधा कृष्ण प्राण मोर, अंतिम पद क्या है? अंतिम पद यही है ना, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास, मैं नरोत्तम दास हूं, मैं सेवा का अभिलाष करता। तुलसी महारानी को जब हम आरती करते हैं क्या बोलते हैं? सेवा अधिकार दिए करो निजो दास। देखो सेवा प्रार्थना करते हैं, अगर हमको सेवा मिल जाए तो भाग जाते हैं। हम सेवा प्रार्थना करते हैं, तुलसी दो टाइम कोई भी इस्कॉन मंदिर में जाइए ना, दोनों टाइम आरती होता है और यही प्रार्थना बोलते हैं। कितना बड़ा प्रार्थना, मुझे सेवा दीजिए, मैं जुगल सेवा राधा कृष्ण की सेवा करो। ठीक है, सेवा करना अभी तो ठाकुर जी करो सेवा, आरती में सेवा प्रार्थना करते हैं, जब प्रैक्टिकल आ जाते तो भाग जाते हैं, सब थियोरेटिकल। सेवा ही जीवन है। हमारा गुरु जी कहा करते थे, अगर तुम गुरु और कृष्ण का सेवा छोड़ दिए, इसका मतलब तुम जिंदे जिंदे मर रहे हो, मुर्दार है। शरीर है, तुम जिए हो, लेकिन मरना बराबर है। ये गुरुदेव कहा करते, सेवा छोड़ने का मतलब यही है, मरना है। वो जीवन जीवन नहीं, जो भक्त है और सेवा नहीं कर रहे उनका जीवन मुर्दा जैसा, सब जैसा शरीर है। हमारा सबसे बड़ा धन है सेवा, दोनों से दोनों का क्या अभिलाष था? सेवा। इंद्रदमन महाराज कोई राजा बनने के लिए नहीं गए थे, सेवक बनने के लिए गए थे। वो ये सबर है, वो भी सेवक बनने, दोनों सेवक का भी जमीन झगड़ा चल रहा है। ठाकुर जी बोले ठीक है, समाधान कर दिए कि अब तुम रुको, तुमसे बहुत सेवा में ले लिया हूं, अभी मेरा भक्त इंद्रदुम्न मुझे सेवा करे। और ठाकुर जी ऐसे बोले और अंत ध्यान हो गए और बहुत पछताने लगे। कौन? विश्वास। सेवा का एक सुख है, भक्तिविनोद ठाकुर यही बोले है ना उनका भजन में, जीवन में सुख दुख आता है लेकिन सबको मिटाने का शक्ति मन में नहीं है। देखिए सुख जब आता है मन कितना उमड़ आता है, मैं सुखी हूं। ठीक है भाई, अभी बोलते हो तुम सुखी हो, जब दुख आता है तो बोलो मैं दुखी हूं, ऐसे खुश हो जाओ। नहीं, ये सुख दुख दोनों हमारा भजन के लिए अनर्थ है। आप मत सोचिए आप सुखी, ये भजन में सहायक है। सुख दुख से भजन का कोई मतलब नहीं, ये दोनों अविद्या है, और सेवा से वो मिट जाता है। भक्ति ठाकुर यही बोले ना, पूर्व इतिहास भूली न सखल सेवा सुख पे माने, तुमी तो हमारा मित तोमार की काज पर धने। ठाकुर जी मुझे दूसरा कोई धन जरूरत नहीं, भक्त ठाकुर यही बोले। आजकल क्या आचार्य लोग का फिलोसफी जो दर्शन है वो रह गया, हम तो प्रीचिंग करने वाले सिर्फ बोल देते। आजकल ऐसा एक परंपरा आ गया, सब दूसरे के लिए बोल रहे हैं, खुद नहीं कर, यही हो गए सबको, जहां जाना है बोल देना है, तुम करो, करेगा कौन? हम बोलेंगे तुम सेवा करो, वो बोलेंगे तुम सेवा करो, सब करने के लिए बोल रहे, कोई नहीं कर रहा, ये बोलने का परंपरा आ गया अभी, करने पहले जमाने में करने का परंपरा था, सब कर रहे थे, बोलने नहीं, ज्यादा बोलते ज्यादा प्रवचन वगैरह नहीं चलता था उस समय, करने वाले ज्यादा थे। आजकल बहुत आ गया ये बोलने वाले परंपरा, करने वाले कम। ठाकुर जी को सेवा करेगा कौन, ममता नहीं तो क्या प्रचार हम करेंगे ठाकुर जी। देखिये भक्ति ठाकुर क्या बोल रहे हैं, यही एक धन है। क्या धन है, जीवन में जितना सुख दुख इतिहास है ना, मैं सब भूल गया हूँ ठाकुर जी। आपका उम्र हो गया कितना, 60 साल हो गया, 50 साल हो गया, तो देख लीजिए ये सिटी में आप, हॉलैंड में आप है, नेदरलैंड में, जीवन में कितना सुख दुख उठाए हैं, कितना बड़ा इतिहास है। छोटा बच्चे थे, पढ़ाई करने गए, कितना प्रॉब्लम फेस की, लेकिन ये सब जो भक्त हो जाते हैं, सेवा करते हैं, सब भूल जाते हैं। मेरे जीवन में मैं ठाकुर जी सब कुछ भूल गया। क्यों तुम भूल गए, जीवन जीवन में इतना सुख दुख आया तुम भूलने क्यों, कैसे भूल गए, ना सेवा सुख पाए, मन मुझे सेवा का सुख मिल रहा है। मंदिर इसीलिए लोग आते हैं, आजकल तो इंडिया में कोई नहीं जाता, इंडिया में हालत ऐसा हो गया, आप जो देख रहे हैं ना वृंदावन पूरी, ये टूरिस्ट है, पहले जमाने में उनको यात्री बोलते हैं, यात्रा में आ रहे हैं ठाकुर जी को भजन साधन करें, आजकल टूरिस्ट जैसा है, चलो वो जाते हल्ला गुल्ला करके वापस चले आते हैं, ऐसा हो रहा है ना आजकल, कोई ममता नहीं है भगवान से, कोई ममता नहीं, इसलिए ज्यादा दुखी है हम लोग। देखिए हम भक्त है, ये आपको शायद खराब लग रहा है, लेकिन ये जरूर, ये मैं जबरदस्त नहीं बोलूंगा, जहां भी जाऊंगा, ये थियोरिटिकल लाइफ नहीं है, ये बोलने का जीवन नहीं, ये करने का जीवन है। मैं भारत में अभी अभी आने से पहले ये बोल रहा था, आजकल सो इंपोर्टेंस देते प्रवचन के ऊपर, वो प्रवचन बहुत अच्छा करते हैं ठीक है, पर प्रवचन 2 घंटा के लिए करते हैं और 22 घंटा क्या करते हैं, उसको पकड़ना है, वो प्रवचन में व्यासासन में प्रवचन देते हैं 2 घंटा के लिए, है ना, 1 घंटा 2 घंटा और कितना घंटा रहा, 24 आवर में 1 घंटा माइनस कर दिया, 2 घंटा माइनस कर, 22 आवर, ये 22 आवर उनका कॉन्शियसनेस कहाँ है, वही इंपोर्टेंट है, प्रवचन इंपोर्टेंट नहीं। 2 घंटा में तैयारी में आप कुछ बोल देते हैं, इसका मतलब आप बड़ा नहीं, 24 आवर को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे कि नहीं, चिंतन कर रहे कि नहीं, गुरु की सुख चिंतन कर रहे कि नहीं, तब तो वो 2 घंटा का वैल्यू है, नहीं तो ये नाटक बजी, ये नाटक बजी, क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस कहाँ है, दिन भर हम क्या सोच रहे हैं, किसका बारे में सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये भक्ति विनोद ठाकुर बार बार ये बोल रहे, ये धन है, सेवा सुख दुख परम संपद नाशय अविद्या दुख, सेवा में भी सुख दुख होता है, लेकिन इस सेवा में जो सुख दुख होता है ना, इसमें अविद्या चला जाता है, अनर्थ चला जाता है, ये धन है, सबसे बड़ा धन यही, इसलिए दोनों का बीच झगड़ा हो रहा है ठाकुर जी के लिए, दोनों भक्त का बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है और ठाकुर जी समाधान कर रहे हैं। सेवा का एक सुख है, इंद्रदुम्न महाराज का क्या अभाव था, वही राजा थे, रानी थे, सब कुछ थे, क्यों इतना तरस रहे थे कि मुझे ठाकुर जी चाहिए, दर्शन करूं, हमारा दर्शन करना लक्ष्य नहीं है, सेवा करना लक्ष्य, हमारे परंपरा में ठाकुर जी का दर्शन करूंगा, इसे हमारा लक्ष्य नहीं, हमारा इंपोर्टेंस है योगी ज्ञानी दर्शन, वो दर्शन कर लेते हैं, हल्ला गुल्ला करते, मेरा ठाकुर जी का दर्शन हो गया, वो पोस्टर में लगा लेते हैं साक्षात्कार। देखिए ना वृंदावन में कितना श्री कृष्ण को साक्षात्कार किए हैं, पोस्टर में लगा लेते हैं, अरे तुम साक्षात्कार कर रहे हो, हम सेवा भी कर रहे हैं, हम हर दिन देख रहे हैं, सेवा कर, सेवक है, सेवा में बहुत बल है। अरे इंद्रदुम्न महाराज दोनों का बीच झगड़ा चला तो ठाकुर जी ने बोले देखो, और इंद्रदुम्न महाराज जब सुना कि ठाकुर जी नीलमाधव जी अंतर ध्यान हो गए, फिर उपवास करने लगे। पहले जमाने में यही था, खाना पीना बंद करके मंदिर के सामने सो जाते थे, ठाकुर जी का सेवा नहीं मिलना तो जीने का क्या क्या लाभ है। जो भक्ति जीवन है ना, भक्ति जीवन का वो बेस है, इसको बेस बोलते हैं, समझते हैं ना, ये प्लेटफॉर्म है सेवा, हमको पकड़ना है, छोटा हो या बड़ा हो हमको पकड़ना है, इसे हम जिएंगे, इतना बड़ा पाठ है, उसका बैस है कि नहीं? उसका बैस है ना, तब तो खड़ा है, और बैस स्ट्रांग है तब तो खड़ा है। सेवा ही प्लेटफॉर्म है, इसलिए बार बार गुरुजी को पूछते मैं क्या सेवा कर सकता हूं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, एक सेवा को पकड़कर आपको जीना है, नहीं तो मर जाएंगे। माया बहुत इंफ्लुएंशियल है, बहुत पावरफुल है, प्रभावशाली। छोटा बड़ा कुछ भी सेवा करना है हम लोग को, तो वो तो उपवास करके सो गए। तब जगन्नाथ जी बोले, देखो इंद्रदम, तुम क्यों उपवास कर रहे हो, मरने के लिए क्यों संकल्प ले रहे हो, तुम जाओ, मैं अब नीलमाधव स्वरूप में प्रकट नहीं हूंगा, मैं जगन्नाथ स्वरूप में प्रकट हूंगा। दारू ब्रह्म बोलते हैं जगन्नाथ जी को, दारू ब्रह्म बोलते हैं। कितना ब्रह्म है नीलाचल में आपको पता है, दारू जी ब्रह्म है ना, ये दारू है ना, इसको हम ब्रह्म नहीं बोलेंगे, लेकिन जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म है। और नीलाचल में और एक चीज है, अर्ण ब्रह्म, जगन्नाथ जी जो महाप्रसाद है ना, निर्माल्य, हम निर्माल्य बोलते हैं उड़िया में, पता है आपको, जगन्नाथ जी का जो सूखा राइस है उसको क्या बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं, निर्माल्य, निर्माल्य मतलब मुख्य। उड़ीसा में जब जब आदमी वो उनका मरण का टाइम आ जाता है ना, मरने के समय इसको दिया जाता है, थोड़ा पानी में डालकर उनको मुख में देते हैं, मुक्त हो जाता है। हम लोग इसे विश्वास करते हैं आज तक, आज तक जगन्नाथ जी का सूखा जो चावल है, राइस है ना, उसको सूखा लेते हैं, जहां भी जाते हैं पहले जमाने में उसको लेकर, गंगा जल और निर्माल्य, निर्माल्य उनको बोलते हैं, वो मुक्ति देते हैं। तो अर्ण ब्रह्म और दारु ब्रह्म दोनों ब्रह्म थे, और एक थे अचल ब्रह्म, उसको अचल, वो इधर उधर नहीं चलता है, एक जगह पर। और सचल ब्रह्म भी थे, सचल ब्रह्म कौन थे, चैतन्य महाप्रभु। दो ब्रह्म का उधर मिलन था, जगन्नाथ तो दारु ब्रह्म है, अचल ब्रह्म है, और अर्ण ब्रह्म है, और उधर सचल ब्रह्म जगत चैतन्य महाप्रभु भी थे। ठाकुर बोले कि मैं दारु ब्रह्म स्वरूप से प्रकट होंगे, और बोल दिए। इसको बांकी मुहान बोलते हैं, मुहान समझते हैं ना, समुद्र और नदी जहां मिलते हैं इसको मुहान बोलते हैं, बहुत डीप होता है, बहुत गहरा होता है। वो चक्रतीर्थ रोड है पूरी में, आप भी मैप में देख लीजिए चक्रतीर्थ, आजकल तो सब गूगल में मिलता है, लगा लीजिए चक्रतीर्थ, तो आपको स्विंग कर देंगे क्या इसका महिमा है। उधर ही ठाकुर जी बोले तुम जाओ उस दिशा में, तुमको पता होगा मैं दारु ब्रह्म स्वरूप में समुद्र में आऊंगा। तब गए इंद्रदम्न, तो इंद्रदम्न तो गए तो देखे कि समुद्र का भीतर बहुत बड़ा बड़ा दारु आ रहा है, और दारु में शंख चक्र गदा और पद्म चिन्ह रहता है। दारु समझते है ना, लकड़ी, हर 12 साल में जगन्नाथ जी का, ऐसा नहीं 12 साल, कभी कभी 13 साल हो जाता है, जुड़वा आषाढ़ बोलते हैं, ये अलग आपको समझ में नहीं आएगा। और इसमें जगन्नाथ जी का जो डेटिस है ना, जगन्नाथ का जो विग्रह है ना, उसको नवकलेवर बोलते हैं, वो चेंज होता है। ठाकुर जी का शरीर को समाधि दिया जाता है, समाधि जैसे हम देते हैं ना, उधर एक है कोइल बैकुंठ को बोलते हैं उधर। और आपको पता है किस दारू में ठाकुर जी का शरीर बनता है, कौन सा दारू में, नीम, नीम बोलते हैं। इसलिए आजकल तो कहां भी लोग पेड़ को काट देते हैं, लेकिन पहले जमाने में हम जो बच्चे थे ना, हम गांव से सीखे हैं, कभी नीम पेड़ और क्या बोले उसको, बनियान पेड़, बरगट और अश्वस्थ पिपिल, इसको कभी नहीं काटते हैं हम लोग, कभी नहीं काटते। अगर आपको काटना है ना, कोई घर का पास है वो टूट गया है, तो शेड्यूल कास्ट लोग को बुलाना है। वो लोग काटेंगे, हम नहीं काटेंगे, क्योंकि ठाकुर जी इसमें बनते हैं ना, नीम का दारू पांव में कभी नहीं रखते थे हम लोग, नीम दारू कुछ नहीं करते थे, पांव में नहीं लगाए। आजकल तो सब लकड़ी बनाकर यूज कर रहे हैं, टेबल बनाकर, नहीं नहीं ठाकुर जी इसमें बनते हैं। और वो जो दारू चेस करते हैं ना, 12 साल के बाद ठाकुर जी का कौन सा दारू में, ठाकुर जी निम दारू में कहां से उपाय है, वो कि देवी है। पंडित लोग जाते हैं वो देवी का पास, बिल्कुल खाना पीना बंद करके उधर ही पड़े रहते हैं। वो देवी बोलते हैं तुम जाओ ये गांव में, वो पेड़ इधर ही है, इस दिशा में ये गांव है, इस गांव में ये पेड़ है। और वो पेड़ में जाते हैं ना, वो पेड़ में देखते हैं वो शंख चक्र जैसा चिन्ह है, तब तो वही पेड़ को पूजा करके लाते हैं, कट कर लाते हैं, तब से ठाकुर जी का। अरे दारू और ब्रह्म, जगन्नाथ जी के शरीर में ना, पुरी में अब बॉक्स जैसा है, उधर में उसको थोड़ा क्या बोले, उसको बॉक्स जैसा बना है पंडित लोग। इसमें क्या, तीनों ठाकुर और सुदर्शन, इसमें सालग्राम और तुलसी और चंदन, इसमें कपड़ा में उसको डालकर भीतर रखते, वो सालग्राम है भीतर। इसको दारू ब्रह्म बोलते हैं ना, ब्रह्म परिवर्तन की, ब्रह्म को इधर लाकर इधर रखे, आंख बंद होता है जो चेंज करते हैं ना, वो कपड़े में लाकर रखते हैं। और 12 साल तक वो चंदन तुलसी वो ऐसा है, ये ठाकुर जी का महिमा, ठाकुर जी का उधर का भीतर हो रहता है 12 साल तक ऐसा ही रहता है। उसको जब चेंज करता है ना, वो कभी नहीं देखता है क्या है कौन, आंख बंद होता है, वो पकड़कर भीतर वो बक्स जैसा सील की है उसको खोल देते हैं, आंख बंद करके उसको बांध डालता है, तब तो उसको चेंज करते हैं। वो दारू पहले जब आए ना समुद्र में, उसमें राजा ने देखे, इंद्रदुम्न महाराज है, शंख चिन्ह है, चक्र चिन्ह है, तब पता चला कि दारू ठाकुर जी बोले थे ना दारू होकर आएंगे, वही दारू ब्रह्म वो आए। समुद्र से देखिए बहुत बड़ा बड़ा दारू है, जगन्नाथ जी को देखे ना कितना मोटा है, तो बहुत बड़ा बड़ा दारू है। वो सब खींचने लगे, हाथी घोड़ा लेकर वो खींचने लगे ऊपर उठाने के लिए, उठा नहीं सके। क्यों, देखो सेवा का कितना बड़ा बल है। आजकल जिसका ऊपर हम इतना भरोसा नहीं करते हैं, बल तो सेवा में है। ये बेस जैसा कोई साधु का बेस बनाया है, कोई तिलक लगा है, माल क्यों किए हैं हम? तो एक प्रश्न आप कीजिए, हम क्यों भक्त बने, क्या करने के लिए, सेवा करने के लिए ना? हम सेवक है इसलिए तो लगता है दास। दीक्षा नाम क्या होता है आपका, दास ना, दास का मतलब क्या है, सेवक है। तो इसीलिए तो भक्त बने। इंद्रदुम्न भी भगवान की सेवक है, लेकिन इंद्रदुम्न खुद कोशिश कर रहे हैं उसको उठाने के लिए, घोड़ा हाथी सैनिक लेकर पूरा वो दारू को समुद्र से निकालने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा। तंग हो गए, रोने लगे, ठाकुर जी क्यों नहीं आ रहे पानी से। ठाकुर जी बोले ये संभव नहीं है, जब तक मेरा भक्त विश्वावसु को तुम नहीं बुलाएंगे तब तक मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। देखो सेवा का कितना बल है। और ठाकुर जी छोड़ते नहीं है सेवक को, इसको याद रखना है। जो थोड़ा बहुत कुछ भी सेवा किया है ना, आप सोचते हैं मैं छोड़कर जाऊंगा, लेकिन ठाकुर आपको नहीं छोड़ेंगे। सही जो सेवक है ना, उनको कहां मिलते हैं सेवक, जो प्रेमिक होते हैं, भावुक होते हैं, भगवान के सुख के लिए सेवा करते हैं, ऐसा वक्त बहुत बेहतर रे। इंद्रदम्न को साफ सुथरा ठाकुर जी बोल दिए, देखो अगर विश्वास को तुम नहीं बुलाएंगे ना, वो नहीं आएंगे ना, इसका मतलब तुम द्वेष मत रखो विश्वावसु से, उनको बुला, उनसे प्रेम करो, तुम दोनों मिलजुल कर जब मुझे उठाएंगे तो मैं आऊंगा। पूरा आकाश बने हुए, फिर उठे, फिर गए विश्वावसु को बुलाए, विश्वावसु को बुलाए तुम आ जा विश्वावसु। अरे दोनों आए, दोनों आने का बाद वो लकड़ी जो दारू थे ना, दारू ब्रह्म को लाए। कैसे लाए आपको पता है, कौन सा चैरियट में? पहले जमाने में इंडिया में पुलक कार्ट, बैलगाड़ी था ना, वही हमारा कार इंडियन कार बुलेट गाड़ी, इसमें कोई पेट्रोल का जरूरत नहीं। और वो लिखा है पद्म पुराण में, वो गोल्डन कार्ट में स्वर्ण रथ में लाए। तो सोच लेती राजा लोग का कितना प्रेम था ठाकुर जी के लिए। हमारे पास इतना पैसा है, सोने नहीं, इमिटेशन पहनते। पहले लोग राजा लोग ठाकुर जी के लिए सोना है, ठाकुर जी का दारू ला रहे हैं, सोने की चरे रथ है। बड़ा बहुत बड़ा कीर्तन करके दारू ब्रह्म को लेकर आए। जहां दारू ब्रह्म लगे थे उसको चक्र तीर्थ बोलते हैं। चक्र तीर्थ पांच तीर्थ है, पुरी में पांच तीर्थ है, इसमें एक चक्र तीर्थ। सुनेंगे पांच तीर्थ कौन कौन पांच तीर्थ। तो वो जगन्नाथ जी को वो लकड़ी को लाए, दारू ब्रह्म को लाए। स्नान पुण्य आपको पता है ना, बर्थिंग डे जो है वो जन्म जगन्नाथ जी का बर्थ डे, जन्मदिन। अगर कोई पूछेगा कृष्ण जन्माष्टमी है, आप मानते जगन्नाथ दिन का जन्मदिन क्यों नहीं मानते हो, है ना? रामनवमी है तो जगन्नाथ जी का बर्थडे कौन है, कौन सा दिन है? वही स्नान पूर्णिमा। उस दिन वो प्रकट हुए थे और लाए, और वही दारू ब्रह्म जो है ना उसको नहाए। जैसे दारू आप देखे ना, जगन्नाथ जी नहाते हैं, बहुत मंत्र पढ़ा जाता है, बहुत कुछ दूध वगैरह दही वगैरह घी ठाकुर जी को स्नान यात्रा। जब स्नान किए लेकिन मन में उनका यही भावना था, तो नील माधव स्वरूप में थे। मेरा इच्छा था तो ठाकुर जी को साक्षात दर्शन करने के लिए, ये तो दारू है। फिर नहाने का बाद ठाकुर जी बोल रहे, देखो मुझे तुम्हारा इच्छा है ना विघ्न स्वरूप में दर्शन करने के लिए, डेटी स्वरूप में, ठीक है भीतर रखो ले जाओ, और कारीगर को बुलाओ और उनको बोलो वो कार्विंग करेंगे, तैयार करेंगे। राजा ने जितना कारीगर थे सबको बुलाए, सब कारीगर लोग आते थे वो मार्तुल वगैरह लेकर, है ना, वो तो दारू को स्पर्श करता ही सब टूट जाता था। पहले आजकल जिसे डेटी बना रहे हैं ना, पहले जमाने में ऐसे नहीं है। मैं पूछा हूं बहुत आदमी को, आजकल कहां भी देखिए इंडिया में चले जाइए, एक फैशन हो गया है, छोटा जगन्नाथ इधर कोई रख लेते हैं, कोई भी बना लेते हैं अभी कारपेंटर। पहले जमाने में ऐसा नहीं, जो बनाने वाले होते हैं वो भक्त होते हैं, फास्टिंग बिल्कुल करते हैं, धोती पहनते हैं, पर फास्टिंग करके ठाकुर जी को प्रार्थना करके वो काम करते थे। आजकल तो पैसा के लिए सब कुछ कर रहे हैं, पहले जमाने में ऐसा नहीं था। एक विश्वास था, प्रेम था, श्रद्धा था, तब तो ठाकुर जी प्रकट होते थे। उनको कारीगर नहीं बोलना चाहिए, जो बनाने वाले है ना उनको ठाकुर जी बोल देते, तुम ऐसा करो, ऐसा मेरा टेढ़ा हो गया है, ऐसा मेरा ऐसा हो गया। वो इतना ममता था ठाकुर जी जो बना रहे थे। ठाकुर जी कई कारीगर को सब बना बोले हैं, तुम बनायो, मेरा नाक थोड़ा टेढ़ा है, इसको सीधा करो। बनाने समय ठाकुर जी बोलते हैं, वो बनाने वाले का इतना ममता था, वो ड्रीम में आकर बोलते थे। मैं सुना हूं बिल्कुल, भुवनेश्वर में हमारे गुरुदेव जो चले गए ना, जो डेटी है ना समाज में हम रखे हैं, जो गुरुदेव का विग्रह है, वो जो बनाने वाले थे वो कटक का है। कितना सैंपल हम लोग बनाए, कितना 10-12 सैंपल बनाए, लेकिन सब भक्तों ने इसको चॉइस की। आज जो विग्रह है ना, जो कारीगर है वो बोल रहे थे क्योंकि वो तंग हो गए थे। हम कितना पिक्चर दिखा है, देखो वो कारीगर ऐसा बना है, हम रिजेक्ट कर दिए, तो आपका ऐसा है, आपको ऐसा ही शकल बिल्कुल बनाना है हमारा गुरुजी जैसा है। और सब भक्त लोग गए तो चस के, हाँ ये ठीक है, हमारे गुरुजी जैसा लगता है। वो बोले, मैं 2 बार ड्रीम में दिखा, क्योंकि वो सोच रहे ना मुझे एक अच्छा मिस्त्री बनना है, एक अच्छा मूर्ति बनाना है, तो लोग मुझे पसंद करेंगे। देखो जितना बार बना रहे हैं हम लोग जाते हैं बोलते, नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो वो बोल रहे थे कि उनको गुरु जी बोलते थे, तुम ऐसा करो, ईशा थोड़ा टेढ़ा है, ये मेरा चीक थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। वो बोले सख्या, तो तो दो तीन बार रिजेक्ट हो जाने के बाद तब एक बार गए तो हम देखे जैसा तैसा बना दिए। तो बोले तुमको कैसा पता चला? तो बोले कि हमको बोले तुम्हारा बाबा ने बोले कि ऐसा करो तो मैं कर दिया। कर्मी देखो ये कर्मी है, कोई भक्त नहीं है, लेकिन 1.10ness हो जाते हैं मुझे करना है, तब तो उनको परमात्मा सहायता कर। हमारा क्या होता है, हमारा 1.8ness नहीं, एकांतिक नहीं है, इसलिए सेवा से जो रेसिप्रोकेशन नहीं आता है। करना है तो थोड़ा तुलसी में पानी दे दो, ठाकुर जी को भोग लगाना है लगा दो, क्योंकि 1.8ness नहीं है। इसलिए भक्ति का जो जीवन है ना वो रेसिप्रोकेशन है, आप उसमें आदान प्रदान जो स्वभाव के होता है ना, प्रेम के स्वभाव के होता है, ये नहीं होता। ठाकुर जी बोलते हैं, ठाकुर जी कोई बनाते नहीं है, ठाकुर जी खुद बन जाते हैं। ठाकुर जी बनाने वाले कौन है? जगन्नाथ जी। तो वो महाराज इंद्रदमन ने जितना कारीगर को बोला है सबका सामान जो वगैरह थे कार्विंग करने के लिए सब टूट गया, तो छूते छूते ही टूट जाता था, क्योंकि वो तो दार ब्रह्म है, वो तो स्वयं प्रकट होंगे, सेल्फ मैनिफेस्टेड डेटी बोलते हैं ना, सेल्फ मैनिफेस्ट अंग्रेजी में बोलते हैं सेल्फ मैनिफेस्टेड डेटी। आचार्य लोग जब ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं ना, सिर्फ वो कारीगर वगैरह वो तो कुछ बनाने वाले नहीं है, ठाकुर जी मैनिफेस्ट हो जाते सेल्फ मैनिफेस्टेड डेटी, वो प्रेम से प्रकट होते। इसलिए जो विक्रम होते हैं ना उसका विभाजन भी है, कैटेगोरीज भी सब है पुराण में सब लिखे। जगन्नाथ जी का जो दारू है उनको बनाने वाले कौन है? सब कारीगर ने सब वापस चले गए, क्योंकि उनका जितना सामान सब टूट गया। तो एक बुढ़े आदमी आए, बहुत बुढ़े आदमी, वो आकर राजा को प्रणाम किए इंद्रद्युम्न महाराज को, महाराज मुझे कार्विंग पता है, ठाकुर जी को कैसे बनाना है ना, जगन्नाथ जी को बलदेव को सुभद्रा को मुझे पता है। सब हंसने हंसी उड़ाई, ये बुढ़े आदमी है कितना तागड़े वाले आए, तो उनका मार्तुल वगैरह उनका सामान वगैरह सब टूट गया, ये बुढ़ा है ये क्या करे, वो कौन है, कौन है? विश्वकर्मा ठाकुर जी को बना सकता है वो? विश्वकर्मा द्वारकापुरी बनाएंगे, मथुरा बनाएंगे, विश्वकर्मा ठाकुर जी क्या बनाएंगे? विश्वकर्मा देखे हैं कभी? भगवान को बनाने वाले भगवान ही होते हैं, भगवान की स्वरूप शक्ति के सिवा भगवान कौन बना सकता है? भगवान प्रकट होते हैं, प्रेम से प्रकट होते हैं, ममता से, और कभी कभी खुद का भाव लेकर वो प्रकट होते हैं। जैसे राधा रमण को कोई बना है, राधा रमण को कोई बना है? गोपाल भट्ट ने गोपाल भट्ट को कोई दे दिया गोपाल का ड्रेस? पहले जमाने में ऐसे होता था, बाबा जी लोग पैसा नहीं देते थे पहले जमाने, बाबा जी लोग का कोई प्रोजेक्ट भी नहीं था, वो तो भजन करने वाले थे। पहले जमाने में रोटी वगैरह देते थे, ठाकुर जी का सामान देते थे, घी ले जाओ, चावल ले जाओ, कपड़ा ले जाओ, और गोपाल भट्ट गोस्वामी को दे दिए ठाकुर जी का कपड़ा दे दिए। तो वो सोचने लगे मेरा तो सालग्राम है, ये कपड़ा लेकर मैं क्या करूँगा, उनको तो तुलसी चाहिए चंदन चाहिए, कपड़ा क्या होगा? अगर मेरा सालग्राम ठाकुर जी बन जाएंगे ना तब तो ये कपड़ा मैं पहनाऊंगा, इतना मानस में चिंता कर दी। और सिर्फ इतना नहीं, वो चाहते थे कि मुझे एक ठाकुर चाहिए जिस ठाकुर में मैं तीन ठाकुर का दर्शन होगा। ऐसा कोई ठाकुर है? एक ठाकुर जी तीन ठाकुर का दर्शन होता है, तीन नहीं चार, वो है राधा रमण। वृंदावन आपको जाना है ना, किसको दर्शन हो? कहां भी जाओ या मत जाओ, लेकिन राधा रमण के पास जाना है, कि उनका इच्छा था कि गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन तीनों ठाकुर जो है ना उस सेल्फ मैनिफेस्टेड डेटीज, उनको मैं दर्शन करूंगा, एक ठाकुर से तीन ठाकुर का दर्शन होगा। और इतना नहीं चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वो महाप्रभु का भक्त है, इसलिए राधा रमण का दर्शन मतलब हो गया गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन और चैतन्य महाप्रभु मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टेड स्वयं प्रकाशित है। तो वो जो बुढ़ा आए थे वो स्वयं भगवान, और बोलने लगे इंद्रदम 21 दिन तक एक दरवाजा बंद रहना चाहिए। वो नहीं बोले कि खाना पीना कैसा चलेगा, वैसा नहीं बोले।
राजा भी नहीं बोले तुम क्या भोजन करेंगे, भोजन का व्यवस्था क्या होगा। वो बोले सिर्फ 21 दिन तक दरवाजा बंद करना है, नहीं खुलना है, कोई आवाज नहीं मुझे लगाना है, मुझे बुलाना नहीं है, क्योंकि मुझे अरविंद करना है। तब 15 दिन हो गए तो राजा जाते थे और सुनते थे दरवाजा के पास में आवाज आ रहा था, कार्विंग जो होता है आवाज आता है ना। 15 दिन तक आवाज आए, जब 10-12 दिन चले तो थोड़ा आवाज कमने लगा, और 14 दिन में सुने कि बिल्कुल आवाज नहीं है। तो रानी बोल रहे हैं, रानी बोल रहे हैं, स्वामी दरवाजा खोल दो, उस शायद बुड्ढा था ना वो मर गया है। आप बुरा मत मानिए, याद आ गया, मैं बोल देता हूँ, खुला आदमी हूँ, मैं बोल देता हूँ, बुरा मत मानिए। ओडिशा में एक कहावत है, अगर पत्नी कुछ बोलती है ना, स्वामी नहीं मानती, स्वामी नहीं मानता है, पत्नी का बात क्या मानती। और वो गुस्सा होकर बोलते तुम्हारा बात मैं मानूंगा, तुम्हारा बात मानकर जगन्नाथ जी का हाथ पैर नहीं है, ऐसे बोलते हैं, मैं तुम्हारा बात नहीं मानूंगी। क्योंकि हमारा राजा ना रानी का बात मान लिए, दरवाजा खोल दिए, जगन्नाथ जी का हाथ पर नहीं है, इसलिए उड़िया में सका होते हैं, वो बोलते हैं मैं पत्नी का बात क्यों बार बार मानूंगी। पति का बात मानना है पत्नी को, और पत्नी बार बार बोलती है तुम कैसा करना है, तुम कैसा करना है, तब पति बोलता है तुम्हारा बात मैं मानूंगा, मेरा ठाकुर इसीलिए ना, ठाकुर का हाथ नहीं है, तुम्हारा बात मैं नहीं मानूंगा। उड़ीसा में कहावत है, आजकल एक कहावत भी नहीं है, सब चला गया है, ये सब मोबाइल आ गया है ना, मोबाइल सब कहावत देता है, ये सब गुरु बन गया है सबका। पहले जमाने में कुछ भी कहावत होता था ना उस शास्त्र से लेकर बोलते थे, आजकल ऐसा नहीं। जैसे मान लो हम लोग को निम्नलिप में केक बनाते हैं, चावल और निम्नलिप और जीरा वगैरह को वो ग्राइंडिंग करके स्टोन में ग्राइंडिंग कर पिसाई करके उसको एक केक बनाते हैं, और ठंडे दिन में देते हैं, क्यों? ठंडे दिन में उसको लेने से ना शरीर में जितना स्किन डिजीज है वो पूरा सुस्त हो जाता है। लेकिन हम नहीं खाते हैं, नीम लिप कौन खाएगा, अभी किसको लड़का को दो ना। लेकिन माँ बोलती है देखो नीम पत्ता खाना है और गीता पढ़ना है और संसार को जय करना है, ऐसे बोलते हैं, नीम पत्ता खाओ और गीता पढ़ो और संसार को जय करो। गीता में ज्ञान मिलता है और पीता में शरीर में बल मिलता है और संसार को तुम जय, ऐसे बोलते बोलते कहावत बोलते थे शास्त्र से। आजकल तो बिल्कुल चला गया, आजकल मोबाइल नहीं भोजन कर रहे, मोबाइल दिखा दो, कार्टून दिखा दो, खाने लगता है, ये हो गया ना जमाना। तो 15 दिन जब हो गया, 15 डेज हो गया ना, तब रानी ने बोली महाराज उस आदमी मर गया है, बुढ़ा आदमी था, 15 दिन तो भोजन वगैरह कुछ नहीं किए, भीतर रहे, वो मर गया। राजा को तो पता नहीं था, ये ठाकुर जी का लीला है, पता नहीं क्या, ये तो ठाकुर जी का बुद्धि तो वही देने वाले, बिगड़ने वाले वही है, देने वाले वही। तो राजा ने खोल दिया दरवाजा, और दरवाजा जब खोल दिया देखे इसे ठाकुर ऐसे मर, ये पद्मासन बोलते हैं, जैसे एक आसन है वो पद्म की जैसा है, जैसे मैं बैठ गया हूं, मेरा पाप पैर आपको दिखाई देता है, कहां पैर दिखाई देता है, वो पद्म हो लटोस पद्मासन जैसे ये तो पैर बैठ गए। इंद्र तो उन्होंने रोने लगे, मैं कितना अपराध कर लिया, पत्नी का बात में मान लिया, क्या हालत हो गया ठाकुर जी, और 7 दिन बाकी है ना, 21 दिन से 15 दिन से खोल दिया ना, उनका भावना ये था कि 7 दिन का बाद शायद हाथ पैर सब वो बनाने वाले थे। अच्छा वो ढूंढने लगे बुड्ढा कहाँ है, वो बुड्ढा कारीगर नहीं है, वो तो अंतर्ध्यान हो गए, विश्वकर्मा कहाँ है, वही तो ठाकुर जी है, वो सेल्फ मैनिफेस्टेड, वो नहीं दरवाजा खोलने लगे तो नहीं कारीगर ने, वो ठाकुर जी ऐसे, और फिर भोजन छोड़ दिया, मेरा कितना बड़ा अपराध हो गया। ठाकुर जी बोले थे नीलमाधव स्वरूप में बोले थे कि मैं जगन्नाथ रूप से प्रकट होऊंगा, लेकिन ये कौन सा ठाकुर है, क्योंकि वेद में ये लिखा है ना जिस ठाकुर का हाथ पैर वो टूट जाता है तो उनको पूजा नहीं करना चाहिए, हाथ होना चाहिए, पैर होना चाहिए, आंख होना चाहिए। देखिए ना, डेटीज में सब कुछ है, सब कुछ है। तो ऐसा कि कैसे पूजा होने का लायक नहीं। तब ठाकुर जी ने क्या किया आपको पता है? जगन्नाथ जी का पहला जो स्वरूप है दर्शन कराए भक्त को, कौन सा स्वरूप में? नरसिंह, नरसिंह रूप। पूरी मंदिर में ना जगन्नाथ जी को जो भोग लगता है, जगन्नाथ जी कौन सा मंत्र में भोग लगता है? गोपाल मंत्र में। गोपाल मंत्र में भोग लगाते हैं ना जगन्नाथ जी को। लेकिन चार विशेष तिथि है जिस तिथि में नरसिंह मंत्र में नरसिंह देव को जैसे भोग लगाते हैं, जगन्नाथ वही स्वरूप दिखा है, नरसिंह स्वरूप। तुम क्या सोच रहे हो? मैं दारू हूं, मेरा हाथ पैर नहीं है, तुम देखो मैं कौन? पूरा नरसिंह स्वरूप दिखाए जगन्नाथ किसको? इंद्रदुम्न को। तब इंद्रदुम्न ने सोचने लगा, प्रभु जी आप अगर ऐसा स्वरूप है तो ऐसे क्यों बने? नहीं नहीं, ये मेरा रूप है, ये मेरा रूप है, यही स्वरूप में प्रकट होता। और कोई साधारण आदमी सोचता है ना, मैं दारू हूं, मैं लकड़ी हूं, ऐसा भावना आएगा ना, इसलिए तुमको नरसिंह स्वरूप दर्शन कराए। तब तो शुरू हुआ जगन्नाथ जी का सेवा। तब ब्रह्मा को बुलाए, गए ब्रह्मा को बुलाने के लिए। ब्रह्मा जी पहले आए, पहले नरसिंह देव को प्रतिष्ठा किए। कहां नरसिंह देव है? अब भीतर जाएंगे तो पता चलेगा। जगन्नाथ मंदिर के पास में एक मुक्ति मंडप है, उसको पंडे लोग बैठते हैं, उसको मुक्ति मंडप बोलते हैं। उनका पास है नरसिंह, इसको आदि नरसिंह बोलते हैं। आज तक उनका महिमा है, वो इतना प्रभाव ठाकुर है आज तक है। एक महीने से पहले उनको चंदन दिया जाता है, कहां? चिस्त में, वक्ष में। गर्म दिन होता है ना, नरसिंह चतुर्दशी कब कब पड़ता है? नरसिंह देव का जो अपीयरेंस डे कब होता है? मैं है ना, गर्म दिन। वो पंडित लोग बोलते हैं चंदन इधर देते हैं वक्ष में, और वो चंदन बढ़ते 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 ठाकुर जी का नाक तक चला जाता है, अपीयरेंस डे। ये बढ़ता है, ऐसा ही बढ़ता है, ऐसे ही बढ़ता है। ब्रह्मा जी का प्रतिष्ठा, पहले वो प्रतिष्ठा किए थे ब्रह्मा जी नरसिंह देव को उधर ही, इसको आदि नरसिंह बोलते हैं। कोई भी जाता है ना पहले आदि नरसिंह को प्रणाम करता है। ठाकुर जी का महिमा है, भगवान आपका साथ जो लीला करेंगे ना, पहले लीला करने से पहले आपका भाव क्या है उसको पकड़ते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी का एक नाम है भावग्राही, भावग्राही। आप कैसे पूजा करते हैं, कैसे सेवा करते हैं, कैसे भजन करते हैं, कैसे बोलते हैं, ठाकुर जी पहले देखते हैं इसका भाव क्या है। कल मैं ये बोल रहा था ना आपको, भक्ति योग का एक नाम है भाव योग। जिसे कोई गरीब आदमी थोड़ा रोटी देता है ठाकुर जी, प्रभु जी आप ले लीजिए, उसका भाव क्या है? आप मत सोचिए आप 5-10 आइटम बनाकर ठाकुर जी को देते हैं लेकिन आपका भाव शुद्ध नहीं है, ठाकुर जी नहीं भोजन करते हैं। तो भावुक है भगवान, भावुक है वो, प्रेमिक है। हम क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में? सेंटिमेंट बोलते हैं। इस सेंटिमेंट, ये भक्ति नहीं है, लेकिन जब भक्त बन जाते हैं ना हम, सही भक्त बन जाते हैं तो ये भावुक हो जाते हैं। भावुक कोई भावुकता भक्ति नहीं है, लेकिन जब भक्ति पक जाता है ना तो भावुक पड़, इस सही भावुकता आता है, सही भावुक। वो बैठ बैठ कर क्या करना कर लेते हैं, सोच लेते हैं। मैं आपका देश का लीला है जगन्नाथ जी, आप मत सोचिए जगन्नाथ प्रभुपद ने इसलिए पहले आए। स्कंद का पहला डेटी कौन है? स्कंद का पहला डेटी जगन्नाथ पहला डेटी जगन्नाथ। अब बचपन से प्रभुपद ने जगन्नाथ जी को बहुत पसंद करते थे, रथ यात्रा करते थे। ये इसका मतलब नहीं जगन्नाथ जो कोई विदेशी लोग पूजा करेंगे, विदेशी लोग प्रार्थना करेंगे, जगन्नाथ जी नहीं सुनेंगे। श्री मंदिर में एक म्यूजियम है, श्री मंदिर में एक मंदिर का पीछे, जगन्नाथ पुरी मंदिर का पीछे एक म्यूजियम है, उसको नीलाद्री म्यूजियम बोलते हैं, नीलाद्री म्यूजियम। इसमें ठाकुर जी का बहुत कुछ चीज है, इसमें एक बहुत बड़ा बेल है, बेल समझते ना, घंटिया है, बहुत बड़ा घंटिया। वो किस देश का है आपको पता है? वो फ्रांस का है, फ्रांस। और इसमें फ्रांस मैं देखा हूं, मैं पढ़ने के बाद गए और देखे सचमुच है। लोग जाते हैं घूम कर चले आते, उनको तो पता नहीं है, इंडियन लोग को क्या पता है। मैं पढ़ाऊंगी किताब में, मैं गया देखा, वो फ्रांस लेटर में लिखा है पूरा, बिल्कुल क्या लिखे है वो भी है मेरा पास, इसमें क्या लिखे हैं वो भी मेरा पास है। वो फोटो कॉपी करके मैं लाया था दूसरे से, जो भीतर में जो कैमरा वाले रहते हैं ना उनको मैं बोला तुम इसको एक फोटो कॉपी करके दो, वो फ्रांस में लिखे, वो फ्रांस का। पहले जमाने में तो क्या बोले, पानी में जाते थे वो जहाज लेकर, पहले जमाने में जो फ्रांस से वो जहाज लेकर जाते, पानी क्या बोलते उसको, पानी जहाज बोलते हैं ना, बोट्स, सेल बोट्स, पानी का जहाज, उसको लेकर जाते। और पहले जमाने में ये लोग जाकर उधर क्या करते, इंडिया में बहुत बड़ा बड़ा चर्च बनाते थे, वो प्रीचिंग करते हैं ना क्रिश्चियन की बाबत में, वो प्रीचिंग करते थे उस समय। तो फ्रांस से उनका नाम भी लिखा है अल्बर्ट वीटू, बीटो उनका नाम, अल्बर्ट बीटो ऐसा है, वो कैप्टन थे, उनका लड़का लड़की वाइफ बीवी सब थे। वो तो कई दिन लगता था ना चर्च में जाने के लिए, और वो चर्च के लिए फ्रांस से, वो चर्च के लिए कहां चर्च, वो है पंडिचेरी, एक टूरिस्ट प्लेस है पंडिचेरी। एक मायावादी है श्री अरविंद, श्रीमान अरविंद एक मायावादी है इंडिया में, उसका आश्रम है, बहुत बड़ा फेमस आश्रम है, यूनिवर्सिटी है वो समुद्र के पास, बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। और विदेशी लोग को तो आप पता है जहाँ टूरिस्ट प्लेस होता है वो उधर ही जाते हैं ज्यादा, तो उनको पता चल गया वो बहुत इधर ही एक चर्च बना है। तो चर्च के लिए जो सामान है इसमें क्या क्या, एक बहुत बड़ा घंटी थी, बहुत पैसा थे, और ज्वेल्स थे, ज्वेल्स, हीरा रत्न, रत्न क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं, संस्कृत में बोलते हैं रत्न बोलते हैं, बहुत कॉस्टली, बहुत गहना वगैरह था और बड़ा घंटी था। और वो जब लेकर जाते थे तो पूरी से कई माइल पीछे थे, तो पहले जमाने में तो कैमरा लगकर देखते थे ना, सेंस में कैमरा लगकर देखते थे क्या जो विंड्स आता है, अभी तरंग आता है, स्ट्रोक झट कभी भी सेटलिंग हो सकता है ना। और वो देख रहे थे कि समुद्र में बहुत बड़ा साइक्लोन हो रहा है, पर वो जो साइक्लोन कौन सा दिशा में आ रहा है, अल्बर्ट बीटो देख रहा है कि जिस दिशा में उनका बोट जा रहा है वही दिशा में आ रहा है। और आपको पता है ना वो लगा बटन दबा देते हैं, रेड बटन दबा देते हैं तो अलार्म बजने लगता है, सावधान हो जाओ। और सिर्फ इतना नहीं, बहुत बड़ा साइक्लोन आ रहा है, और साइक्लोन तो थोड़ा दूर में है, और बोट का पास देखे एक तिमी, देखे तिमी समझते है ना, क्या बोले हिंदी में, हिंदी में तो तिमी बोलते हैं, तिमी गिल, हाँ शार्क, बहुत बड़ा जो मछलियां है ना समुद्र में, तिमी एक है और एक है तिमी गिल। तिमी को बड़ा शार्क को जो पूरा निगल लेता है, वो इतना बड़ा बड़ा होते हैं कि बड़ा बड़ा बोट को पूरा निगल लेते हैं, और आयरन वगैरह सबको डाइजेस्ट कर देते हैं, इतना बड़ा बड़ा जानवर है। उन्होंने देख लिया क्या बना है, तिमी गिला रहा है। अगर वो ऐसा उनका जो क्या बोले पूछ है ना, वो थोड़ा ऐसे कर देंगे तो बस वो पानी में गिर जाएगा, फिर वो डूब जाए, और पूरा सामने आ रहा है। और रोने वाले पहले कौन है, कैप्टन, कि उनका पत्नी है, छोटा लड़का है, उनको कुछ समय से पहले उनको प्यार करता था, अभी कैमरामैन जो है वो हल्ला गुल्ला करने लगे, कैप्टन इधर आ जाओ, बेटो इधर आ जाओ, देखो कितना बड़ा साइक्लोन आ रहा है, झड़ आ रहा है, और इसका साथ इतिमी आ रहा है, सरकार है, क्या करना है। रोने वाले पहले रोने लगे और अलार्म लगा दिए, सब रो रहे थे, लेकिन एक आदमी थे। देखो भगवान जी कैसे प्रार्थना सुनते, कोई भी एक सही भक्त है ना सबको जिला लेता है, प्रभुपाद जी एक आए, देखो सारी दुनिया को चिल्ला रहे, हम लोग जी रहे, भक्ति का कितना बड़ा महिमा है। हम जब तक शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे ना, तब भक्ति का महिमा हमको पता नहीं होगा। हम हमारे पास जितना भक्ति है उतना ही हमको पता है, मत सोचिए कि भक्ति सब कुछ पता है, नहीं। भक्ति गहरा सागर के जैसा है, जितना भीतर आप जाएंगे ना उतना भी। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, मछलियां ऊपर, छोटा छोटा मछलियां पानी का ऊपर मछलियां है, समुद्र के ऊपर देखे ना छोटा छोटा मछलियां है, और भीतर जाएंगे बड़ा बड़ा मछलियां, और भीतर जाएंगे और पूरा भीतर जाएंगे ना उधर जेम्स है, जेम्स है, वैल्यूएबल स्टोन्स है। भक्ति ऐसा एक सागर है, इसलिए रूप गोस्वामी ने लिखे है ना, भक्ति रसामृत सिंधु। अंग्रेजी में आप बोलते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति ऐसा है एक सागर जैसा, रस का सागर है, इसमें डुबकी लगाना है हम लोग। सब रो रहे थे, सब रो रहे थे, लेकिन एक आदमी एक छोटा फटू पिक्चर को पकड़कर, और नहीं रो रहे थे, उनको प्रार्थना कर रहे थे। आप देखिए ना, जब लैंडिंग करता है क्या फैन, जब फ्लाइट जब लैंडिंग करता है, वो घूमते हैं, देखते हैं बेल्ट लगाए कि नहीं, टेबल बंद किए कि नहीं, सब बेल्ट लगाए कि नहीं, ऐसे वो घूम रहे थे अलबर्ट, क्योंकि अलार्म लगा दिया ना, सबको मरना है, उतरना है, तैरना है, कुछ भी करना है ना। अभी साइक्लोन आ रहा है उसका साथ, वो सार भी आ रहा है, सब वो नहीं रोएगा, हम नहीं रोएंगे। जब कैप्टन बोल रहे हैं कि ये डूब जाएगा, लेकिन एक आदमी बैठे, देखो भक्त ऐसे होना चाहिए, संसार में कुछ भी हो जाएंगे। तो सपोज आप सोच रेड अलर्ट हो गया कि इधर बम ब्लास्टिंग होगा, होगा ना, आटम बम गिरेगा, तो क्या करेंगे हम? ठाकुर जी है, क्या करेंगे हम? भागकर चला जाएंगे ना, आटम बम गिरेगा, चलो नहीं, हमको नहीं जाना है, ठाकुर जी है ना, तो आज नहीं मरेंगे कल क्या नहीं मरेंगे, मरना है तो है, मरना है तो ठाकुर जी का साथ ही मरना है। हम लोग का इतना विश्वास नहीं है, पहले जमाने में लोग का इतना भक्तों का विश्वास था ना। देखो जब सब तैयार हो रहे हैं तैरने के लिए, मरने के लिए सब रो रहे हैं, एक जगन्नाथ जी का पिक्चर, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीनों का छोटा पिक्चर। पहले जमाने में ऐसा था, पहले जमाने में इंडियन लोग जहां भी जाते हैं ना ठाकुर जी का पिक्चर लेकर जाते थे, सुबह सुबह उनको देखते हैं, प्रार्थना करते थे। आजकल क्या बोलते हैं, मेरा मोबाइल में सब कुछ। अरे तुम्हारा मोबाइल में माया है और इसमें कृष्ण कैसे रहेंगे, तुम फोटो कितना ही फोटो रखो, बोलते ना लोग दिखाते, देखो देखो मैं वृंदावन गया था, फोटो मोबाइल में माया भी है, माया के पास कृष्ण रहेंगे थोड़ा, तुम जो खींच कर लाए वही का भगवान है, ये हम नहीं मानने वाले हैं। तुम कितना बोलो कंप्यूटर में है मोबाइल में, हम नहीं मानने वाले, तुम्हारे दिल में रखना चाहिए, वो इसमें क्या है। वो तो उनका नाम था कुलशेखर, कुलशेखर उनका नाम था, उनका घर पूरी का पास है, पिपली आपको पता है, पिपली एक स्थान है, इसमें बहुत कार्विंग होता है, बहुत कार्विंग करते हैं कि नहीं, इसको क्या बोला, हाँ कपड़ा में बहुत कार्विंग करते हैं वो लोग, वो एरिया में, उसी एरिया का वो लोग था, कुलशेखर सौदागर उनका नाम है। बचपन से जगन्नाथ जी का भक्त है, सब रो रहे थे लेकिन वो जगन्नाथ जी का फोटो को पकड़कर हंस रहे थे, हंस रहे थे। तो बीटो ने उनका पास के अत्यन्य आया, बोले देखो सब रो रहे हैं, तुम बिल्कुल निश्चल हो, तुम क्या कर रहे हो? मैं ठाकुर जी को प्रार्थना कर रहा हूं सबके लिए। तो बोले क्या, ये कौन है, कोई नया आदमी देखेंगे जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा उनका पिक्चर देखे तो क्या बोलेंगे, ये कौन है, काला काला इतना बड़ा बड़ा आंख है, वो क्या है? समझ में नहीं, समझ में आता है, हम लोग का समझ में कभी कभी नहीं आता है, इसे क्यों है, ऐसा क्या, ये भाव का है ना, जो भावुक है वो समझ सकते हैं, वो भावुक रही, ये कृष्ण है, लेकिन देखिए कैसे भावुक बन गए। तो उनको आश्चर्य लगा, ये तुम्हारा भगवान है, वो अंग्रेज में बोला कुलशेखर ने, जगन्नाथ इज लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, बोले ये भगवान है, तुम इतना प्रार्थना कर रहे हो, सिंसियर प्रार्थना कर रहे हो, और क्या होगा? बोला मैं बोल रहा हूं ये चाहेंगे ना जिला देगा हम लोग को। ये बोले इम्पॉसिबल है, क्या हमारा बोल रहे हैं कई फीट दूर में साइक्लोन है और मगर है, ये इम्पॉसिबल। देखो हमारा भगवान के लिए कोई असंभव नहीं है। हमारा जीवन में हमको बहुत इम्पॉसिबल लगता है, नौकरी मिलेगा इम्पॉसिबल, बोलने वाले हम हैं, क्वेश्चन हम करते हैं और आंसर करने वाले कौन है? ठाकुर जी को चांस हम नहीं देते हैं। इंडिया में जा सकूंगा इम्पॉसिबल, पैसा कहाँ मिलेगा, कार कार में कर सकता हूँ ना, ये इम्पॉसिबल भाई। हमारे लिए इम्पॉसिबल है, ठाकुर जी के लिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, उनके लिए असंभव क्या है? अगर वो असंभव है तो भगवान क्यों बने? आदमी के लिए असंभव है, उनके लिए कोई असंभव नहीं। इसलिए हम कभी दुखी नहीं बनना चाहिए। मेरा जीवन में सुख कभी 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 भक्त लोग बोलते मेरा जीवन में सुख कुछ नहीं मिला। तुमको कुछ नहीं मिला तो ठाकुर जी चाहेंगे तो एक दिन में संसार में तुमको सबसे बड़ा सुखी बना देंगे। प्रभुपाद जी इसीलिए कहा करते हैं, वन हु मेक इम्पॉसिबल टू पॉसिबल हिज कम। प्रभुपाद जी ने इतना वेदवाणी जैसे बोले, प्रभुपाद बोल रहे थे संवादिक लोग रिपोर्टर लोग, भगवान कौन है? प्रभुपाद यही बोले, वन हु मेक इम्पॉसिबल टू पॉसिबल एंड पॉसिबल टू इम्पॉसिबल, दोनों बातें, संभव को असंभव कर देने वाले वही है और असंभव को संभव कर देने वाले वही। हम इसको पूजा कर रहे हैं, उनका सेवक है। तो हमारा जो प्लान चलता है ना हमारा दिमाग में, वही प्लान चलाता है मन, ये संभव नहीं, ऐसा नहीं होगा, भक्ति नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, मैं भिखारी बन जाऊंगा। तो मालिक हो गया, तुमको पता है सब कुछ, वो तो मालिक है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, उनको पता है। हमारे लिए इम्पॉसिबल, ठाकुर जी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, जगन्नाथ जी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। तो बोले अगर ये ठाकुर जी ऐसे कर देंगे, अगर सबको चिल्ला लेंगे ना, अल्बर्ट बेटो ने बोले, तुम जिसको इतना सिंसियर प्रेम करते हो अगर वो चिल्ला लेंगे ना, मैं बोलता हूँ जितना सामान है ना वो चर्च के लिए सब मंदिर में दे दूंगा, जगन्नाथ मंदिर में सब दे दूंगा, जितना मैं ले रहा हूं वो चर्च के लिए, जितना सामान मैं फ्रांस से लाया हूं ना इधर मैं रखूंगा, लैंडिंग करना इधर सब दे दूंगा। तो वो तो प्रार्थना, वो तो प्रेमी की वजह से प्रार्थना कर रहे थे। तो दो चार मिनट का बाद एक बहुत बड़ा आवाज निकला समुद्र से, विस्फोरण जैसा, समझ रहे हैं ना, ये कौन ठाकुर साहब, जगन्नाथ जी ने चक्र छोड़ा, क्या क्या किए, इतना बड़ा आवाज हुआ जैसा ब्लास्टिंग होता है ना, पानी का भीतर बहुत बड़ा आवाज हुआ, और साइक्लोन जो आया था ना वो दूसरा दिख में चला, और जो तिमी आ रहा था, शार्क आ रहा था ना, वो इधर आया ऐसे घूमकर चला, जो सीवर एक्सीडेंट है, और साइक्लोन बिल्कुल साफ हो गया, एक आवाज सिर्फ सुनने लगे सब। तब उनको पता चला, जो प्रार्थना कर रहे थे उनको पता चला, जगन्नाथ जी ने कुछ कर शादी करके दिखा दिए, अभी पता होता है। तो आए अल्बर्ट बिटो ने सबको बोला, अभी डेंजर नहीं है, नो मोर डेंजर। तो बोले अब नहीं जाने वाला हूं, अभी इधर ही रहना है। वो आए पूरी में उतरे, और जो सामान वगैरह है ना वो सब लाए, बहुत वैल्यूएबल ज्वेल्स दिया था जगन्नाथ जी को, वो अभी तक है मंदिर में है। जब भारत में जब इंडिपेंडेंट हो गया ना, भारत स्वाधीन हो गया, भारत जब स्वाधीन हो गया तो फ्रांस गवर्नमेंट ने लिखा था कि हमारा जो चीज है वो वापस दो। उस समय में तब भारत ने बोले कि हमारा देश में कुछ जो दान दिया जाता है वापस कभी नहीं आता है, हमारा इल्ला है, आप दे दिए तो एक बार दे दिए, वापस फिर क्या लेंगे, पैसा के ये नहीं, ये जगन्नाथ जी का भक्ति का क्या बोले निशान है। देखो एक हे तो क्रिश्चियन, लेकिन जगन्नाथ जी के लिए इतना प्रेम है, इतना ममता है, इतना विश्वास है, और वो जो बड़ा घंटी है ना, घंटी है जो बेल्स है, इसमें वो फ्रांस में लिखे हैं उनका नाम, डेट, और मैं दान दे रहा हूं जगन्नाथ के लिए। अभी है, अभी भी पूरा खुला है, पूरा खुला, ठंडी बरसात सब हो रहा है, लेकिन वो इतना ही बहुत बड़ा, इतना बड़ा, आप देखे हैं ना चर्च में कितना बड़ा बड़ा घंटी लगता है, ऐसी घंटी अभी है जगन्नाथ मंदिर। वो सर्वसमर्थ है भगवान। हमारा क्या, हमारा बुद्धि बहुत कम है, विश्वास बहुत कम है, भक्ति सागर जैसा है। तो हमारा शरणागति जो जितना जितना कंप्लीट हो, जितना परसेंट कंप्लीट होता है उतना प्रोटेक्शन हम फील करते हैं। अगर हम 25% सरेंडर है ना, हमको 25% प्रोटेक्शन मिलेगा। इसमें डाउट को नहीं करना चाहिए हमारा। हम कभी कभी सोचते हैं, मैं इतना भजन किया हूं, तुम इतना भजन किए हो, लेकिन कितना शरणागत हो, कितना डिपेंडेंट हो, ये इंपोर्टेंट। ठाकुर जी के ऊपर कितना भरोसा कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा बात है। तब इस हिसाब से हमको फल मिलता है। तब तो इंद्रदुम्न महाराज ने जगन्नाथ जी का मंदिर, तब से सेवा शुरू हुआ। सेवा तो कई प्रकार की सेवा है, तो क्या बोले, इसमें बहुत वैरायटी की सेवा है, और सेवक भी बहुत है, बहुत सेवक है। और 5 तीर्थ है पुरी में। आप अगर कोई पुरी जाते हैं ना, कोई भी इंडियन उड़ीसा लोग जाते हैं ना, 5 तीर्थ पहले इसमें नहाते हैं। पहले स्वर्ग द्वार बोलते, समुद्र का पास। पहले जमाने में कोई भी है ना, हमारा उड़िया लोग, कोई भी मरता है ना, मरने से पहले मेरा लड़का को बोलता है, लड़का अगर तुम्हारा पैसा होगा ना, मुझे ले जाना स्वर्ग द्वार, ससाने उधर जलाए जाते हैं। और पुराण में ऐसा लेखे हैं, उधर कोई शरीर छोड़ देता है ना, उनको मुक्ति हो जाता है। उनका नाम स्वर्ग द्वार क्यों है पता है आपको? पहले ब्रह्मा जी जब आए ना उधर लैंडिंग किए, स्वर्ग जाने के लिए द्वार है, इसलिए उनका नाम है स्वर्ग द्वार। समुद्र का पास है स्वर्ग द्वार, और सब देवता ने उधर उतरे, और आज भी एक स्टोन उधर है। आप जाएंगे ना उधर, आप जा सकते हैं, कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं। ये तो मंदिर का बाहर का चीज है, मंदिर बाहर बहुत कुछ देखना है, मंदिर का भीतर सिर्फ जगन्नाथ को देखना है। पूरी में मंदिर बाहर, बाहर में बहुत कुछ है, जगन्नाथ जी का लीला बहुत कुछ है। एक स्टोन है, वो विटनेस है, साखी है, कि देवता लोग इधर उतरे थे, ब्रह्मा जी उतरे थे उधर। हंस वाहन है ना उनका, क्या वो हंस, हंस बोलते हैं ना, हंस उधर ही उतरे थे, वो भी उस स्टोन है। जैसे चक्र तीर्थ हम सुन रहे हैं ना, चक्र तीर्थ जहां दारू लगे थे उधर एक हनुमान है। ये जगन्नाथ जी की लीला है, वो बेड़ी हनुमान, वो रज्जू में, रस्सी में उठा हनुमान जी, जगन्नाथ जी ने उनको बांध दिए हैं। पता है आपको क्यों? वो समुद्र पहले क्या करता था, आजकल जैसे हो रहा है, समुद्र जो वेव्स है ना, वो कभी कभी पूरा उनका कुल बोलते, कुल लंघन करना, सीमा होता है ना, उस सीमा को छोड़कर चले जाते, बीच सी बीच, जैसे पानी सी बीच से बाहर चले जाते। तो ये जगन्नाथ जी के लिए बहुत खतरनाक है, सेवक के लिए। तो जगन्नाथ जी ने हनुमान को बुलाया, हनुमान तुमको उधर ही रहना है, समुद्र को बाहर नहीं छोड़ना है, भीतर बोलो उनको, भीतर रहना है। देखो ठाकुर जी का क्या लीला है, हनुमान को बुलाया, उनको अपॉइंटमेंट दे दिए, तुम्हारा काम है समुद्र को आगे नहीं बोलना है, कि उनका कुल लंघन नहीं करना है, उनका जितना सीमा है सीमा के भीतर रहना है, आगे नहीं आना। लेकिन हनुमान जी को महाप्रसाद बहुत, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ना, वो जब भोग लगता था ना, लड्डू, बड़ा बड़ा लड्डू भोग लगता है, तो हनुमान जी चले आते, समुद्र छोड़कर चले आते वो लड्डू खाने के लिए। कई स्थान में हनुमान है और कई स्थान पर शिव है, क्यों है? उसका सब लीला है, जगन्नाथ जी लीला। तो लड्डू खाने के लिए वो चले आते। तो एक बार जगन्नाथ जी ने देखा कि वो समुद्र, उनका जो सीमा है उसको लंघन करके चले आए। तो पंडा लोग ने हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, समुद्र चले। तो ठाकुर जी बोले, हनुमान तुमको मैं बुला था ना उधर रहने के लिए, तुम क्यों इधर आए हो? बोले ठाकुर जी में प्रसाद महाप्रसाद पाने के लिए लड्डू में ले जाना चले आए। तो ठाकुर जी बोले उसको बांध कर रख लो, जगन्नाथ जी बोले रस्सी में उसको बांध दो। बोले प्रभु जी मैं प्रसाद मुझे चाहिए। बोले चिंता मत करो, हर दिन 5 लड्डू, बड़ा बड़ा लड्डू है ना, बहुत बड़ा बड़ा लड्डू, 5 लड्डू मैं भेजूंगा तुम्हारे लिए, उधर ही रहो। और वो समुद्र अब जाएंगे ना हनुमान उस समुद्र की दिशा में से, तुम मत आना इधर, मैं इधर खड़ा हूं अभी वो है। और वो बोले कि सिर्फ मैं लड्डू खाने के लिए, मैं तो इधर आ रहा था, आपका दर्शन थोड़ा हो रहा था, आप तो लड्डू भेज देते हैं लेकिन दर्शन तो नहीं मिल रहा। ठाकुर जी बोले हर अमावस्या को मैं आपका पास ही जाऊंगा। ठाकुर जी जगन्नाथ जी जाते हैं हर अमावस्या को, जाते हैं उनको दर्शन देकर आते हैं, सेवा करने सब मिलता है। हम क्या बोल रहे हैं, सेवा नहीं करेंगे, ठाकुर जी आकर मेरा सेवा कर देंगे। आजकल हम इतना आलसी हो गए हैं ना, करने के लिए कोई तैयार नहीं, कुछ सब मुझे मिल जाएगा, इसे कुछ मिलता है, इसे कुछ नहीं मिलता है। तप में सब कुछ मिलता है, भोग में कुछ नहीं मिलता है। भोग में एक चीज मिलता है आराम, क्या भोग में रोग मिलता है, रोग कमाओ, भोग बढ़ाओ और रोग कमाओ, यही आजकल स्लोगन हो गया ना, बोलते ना एंजॉय एंजॉय एंजॉय, क्या है डिजीज के कमाना है तुमको, एंजॉय कर रहे हो तुम, शरीर भोग के लिए क्या, आदमी का शरीर तप के लिए, ये शरीर जो मिला है ना तप के लिए, आप अभी तप नहीं कर रहे हैं, जब बुढ़ा हो जाएंगे तब डॉक्टर बोलेगा मॉर्निंग वॉकिंग करो, करो मॉर्निंग वॉकिंग, शुगर हो गया, चावल नहीं खाना, रोटी नहीं खाना, बोल रहे हैं ना, चावल नहीं खाना है रोटी खाओ, आलू नहीं खा सकते हैं, इतना खाओ ज्यादा नहीं है, करोड़पति आप देखो, तब करना है आपको। आज का हम आलसी बन गए हैं, पहले जमाने में सेवक सब थे, इसलिए ठाकुर जी उनका पास जा रहे थे। करोड़पति मिलेगा, सेवक नहीं मिलेगा। पैसा दे देंगे आपको, कलेक्शन कर दो दे देते, तो बोलो 5 दिन आ जाओ भाई मंदिर में रखकर थोड़ा सेवा कर लूं, 5 घंटा के लिए आपको सेवक नहीं मिलेगा। जगन्नाथ जी का बहुत कुछ लीला है, बहुत कुछ, 5 तीर्थ है इसमें, चक्र तीर्थ है, स्वर्ग द्वार एक तीर्थ है और श्वेत गंगा एक है। देख आप जाएंगे नहीं तो बाहर का इसको देख सकते हैं, आप भक्त से मिलजुल कर आप देख सकते हैं, कभी इंडिया जाते हैं ना हमारा भक्त लोग उधर है तो आपको घुमा घुमा कर दिखा देंगे कहां श्वेत गंगा है, गंगा गंगा की बराबर है, श्वेत का, श्वेत नाम का एक राजा थे, श्वेत नाम, अभी वो जाएंगे ना उसके बहुत बड़ा पंड है उधर पुष्करणी सरोवर, श्वेत गंगा उसको बोलते, वो राजा थे ना, इंद्रदुम ने जैसे ठाकुर जी की भोग बनाए थे ना, सब ठाकुर जी की सेवा के लिए जैसे भोग का मेनू बनाए थे ना, वो ऐसे ऐसे बना रहे थे, सब पैसा खर्च करके ठाकुर जगन्नाथ जी के लिए सब, इसे लड्डू बनाना, जगन्नाथ जी का खान पान बहुत उल्टा है, बहुत कितना मिठाई खाते हैं आप लोग, पागल हो जाए, गर्म दिन आ जाता है, गर्म दिन में ठाकुर क्या खाते हैं आपको पता है, राइस कुकिंग होता है इसमें पानी डाल देते हैं और इसमें अदरक जिंजर और घी, रात में ठाकुर जी खाएं नींद अच्छा होगा, ठाकुर जी को नींद नहीं होता है उड़ीसा में बहुत गर्म होता है ना, इस रात में ऐसे ठाकुर जी खाते हैं, हम पखाल बोलते हैं, चावल कुकिंग करने का बाद उसमें पानी डालना है, उसमें घी डालना है, थोड़ा नमक डालना है और थोड़ा अदरक डालना है, रात में ठाकुर जी खाएंगे इसको। और ग्रीन बनाना है ना, ग्रीन बनाना जो है वो फ्राई होता है घी में, इसको रात में खाते। कई इंद्रदुम्न ने एक प्रार्थना किया था, क्या प्रार्थना आपको पता है, ठाकुर जी आप पतित है ना, पतित पावन है, हम लोग तो पतित है, तो एक काम करना, कोई भी मंदिर आता है ना हर समय प्रसाद रहना चाहिए, दूसरा मंदिर में प्रसाद नहीं मिलता है, टाइम पर जाएंगे तो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा, कोई ऐसा आदमी नहीं बोल सकता कि मैं जगन्नाथ पुरी गया हूं उधर प्रसाद नहीं, ऐसा नहीं कभी नहीं, इंद्रदुम्न ने बोला था, वो ऐसा बर चाल से चल, ऐसे बात चाल से चलाया कि प्रसाद मिलेगा ही मिलेगा, उनको पता है ना जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म है, उनका प्रसाद जो भी प्राप्त कर लेता है ना, मुक्त हो जाता है। हम लोग का तो विश्वास है, हम जो भारत के लोग, विशेष ओडिशा के लोग, पूरा विश्वास है। आपको पता है ना, हमारा पिताजी अगर मर गया ना, अगर पिताजी मर गया, उनका 10-12 दिन में जो श्राद्ध क्रिया होता है ना, आप कितना गरीब आदमी हो, आपको पूरी आना होगा, थोड़ा इतना ही महाप्रसाद लेना होगा और सबको देना होगा। आप लोग पा लीजिए महाप्रसाद, मेरा पिताजी उद्धार हो जाए, हम लोग का इतना विश्वास है। अब मरने के समय हमको कुछ जरूरत है या नहीं है, एक चीज जरूरत है, गंगा पानी और ठाकुर जी का सूखा निर्माल्य, उसको देते हैं, छोटा कटोरी में रख लेते हैं, घर का आदमी सब आते हैं, थोड़ा चामच में, टीस्पून में थोड़ देते हैं पानी, थोड़ा थोड़ा निर्माल्य और गंगा पानी, हम मानते हैं सब। और कूला कम कभी नहीं करते हैं। पूरी लोग जो है ना, जिन लोग को पता है ना प्रसाद पाने का बात, आप क्या करते हैं, कूला कूला समझते हैं ना, कूला नहीं करते हैं। महाप्रसाद पाने का बात, जगन्नाथ जी का प्रसाद साथ, कूला नहीं, कभी नहीं करते हैं। ये वाशिंग, माउथ वाशिंग करते हैं ना, फेंक देते हैं, नहीं, उसको नहलाए भीतर, कभी पूरी लोग ऐसा नहीं करते। और दूसरा सब्जी का साथ कभी नहीं लेते हैं, जगन्नाथ जी का जो प्रसाद, ये अर्ना ब्रह्म है ना, आप ऐसा नहीं करेंगे कि जगन्नाथ जी का दाल राइस ले आएंगे और आप पनीर बना लेंगे, ये भी अपराध है। नहीं, जगन्नाथ जी का प्रसाद का साथ दूसरा प्रसाद, वो कभी, वो पूरी लोग देखेंगे ना, धुलाई करेंगे, वो बहुत, ये मेरा एक्सपीरियंस है। हम लोग थे गाड़ी में, बुक डिस्कशन कर रहे थे, पास में थे एक स्कूल में, पूरी का स्कूल में, हम लोग सोचे बहुत पैसा क्यों खर्च करेंगे, जगन्नाथ जी का थोड़ा प्रसाद ले आएंगे, और हमारा तो चावल होता है, डालमा होता है, बस उसका साथ हम ले जाएं। वो लोग ने सुन दिए और सचमुच देख लिए कि हम ऐसे कर रहे हैं। वो 4-5 आदमी आकर हमको बोले, तुम बाबा जी बने हो, तुमको पता नहीं जगन्नाथ जी का प्रसाद का साथ दूसरा प्रसाद खा रहे हो तुम, वो मानते नहीं किस। तब से हम लोग सीखे, हाँ ठीक है, ठीक, तुमको लेना हो सेपरेट लेना है, जगन्नाथ जी का प्रसाद अलग सम्मान देना है। ये ब्रह्मा और शिव जी ये भी कामना करते हैं, इसलिए आपको पता है ना, उधर कोई चेयर वगैरह कुछ नहीं है। आप जाएंगे ना, आप बोलेंगे मैं महाराज हूं, तुम महाराज हो या गुरु हो, नीचे बढ़ना है, नीचे बढ़कर खाना है। और जब प्रसाद आप भोजन कर रहे हैं ना, इसमें अगर कोई झूठा उधर है ना, वो पत्ता से झूठा, कोई निम्न नीचे जाति का है, ब्राह्मण, आप ब्राह्मण है, वो शूद्र है, वो खाकर प्रसाद पा लिया और छोड़कर चला गया, उसको लाकर आप पा सकते हैं, कोई दोष नहीं। हम लेते हैं इसे, हम लेते हैं, हर दिन जो पुरी में रहता है वो हर दिन प्रसाद देखता है ना, इधर थोड़ा प्रसाद पड़े वो ले आते, लगाकर चले जाते, कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो मैं यही बोल रहा था, इंद्रदुम्न महाराज ने जैसे प्रसाद का मेनू बनाया था ना, भोग का मेनू बनाया था जगन्नाथ जी के लिए, इस श्वेत राजा इसे, लेकिन उनका ये एक चिंता हो रहा था, मैं तो आदमी हूं ना, आदमी होकर ठाकुर जी के लिए ये बना रहा हूं, ठाकुर जी शायद ये ग्रहण करते हैं कि नहीं। जैसे कभी कभी पूजा लोग ये सोचते हैं ना, मैं ये फूलमाला देता हूं, कुकिंग करता हूं, ठाकुर जी भोजन करते हैं कि नहीं, ठाकुर जी भोजन करते हैं कि नहीं, डाउट होता है कि नहीं, हम लोग का डाउट होता है। हम लोग क्या है, हम लोग तो कुकिंग करके लगा लेते हैं, ठीक है ठाकुर जी तो भोजन किए कि नहीं, हम लोग इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन श्वेत राजा ने बहुत दिन ऐसे सेवा करने का बाद मन में एक चिंता है, तो जगन्नाथ जी स्वप्न में आकर बोले, क्या तुम बोल रहे हो, तुम्हारा सेवा में ग्रहण नहीं कर रहा हूं, तुम जो व्यवस्था कर रहे हो ना भोग का व्यवस्था, मैं सब ग्रहण कर रहा। और ये बोले कि ठाकुर जी मुझे मुक्ति चाहिए, मैं राजा हूं, मन में भोग वासना है, मुझे मुक्ति चाहिए। तो बोले तुम इस श्रीक्षेत्र में रहो, बाहर मत जाओ, और मेरा भोग का व्यवस्था करो तुम, और तुम्हारे लिए मेरा एक आदेश है, तुमको महाप्रसाद हर दिन लेना है, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद हर दिन भोजन करना है, और इधर एक ठाकुर जी को प्रतिष्ठा करके तुम सेवा करो। श्वेत माधव, अब जाएंगे ना उधर है, श्वेत माधव और मत्स्यदेव दोनों ठाकुर, श्वेत माधव एक ठाकुर जी को प्रतिष्ठा किए थे, और वो श्वेत राजा के नाम से एक सरोवर है, इसको श्वेत गंगा बोलते हैं, श्वेत गंगा। गंगा जी उधर ही प्रकट हुए थे, ठाकुर जी चरण कमल में। उड़िया लोग बोलते हैं ना, अगर बोलेंगे पहले, जब आज का तो सब पैसा हो गया, ट्रेन हो गया, फ्लाइट हो गया, चार धाम जाना, सब सब जगह में जाना संभव नहीं था। पहले जमाने में लोग बोलते थे कि तुमको केदारनाथ नहीं जाना है, बद्रीनाथ नहीं जाना है। वो बोलते क्यों जाना है, जगन्नाथ जी के चरण कमल में सब कुछ है, अब कहां नहीं जाना है, गंगा जमुना कहां नहीं जाना है, सब उधर ही। जैसे ब्रजधाम में सब कुछ है ना, पूरी में ठाकुर जी ऐसे बनाए, गंगा है, गंगा जी ने प्रकट हुए, इसलिए उसका नाम श्वेत गंगा पड़ा, श्वेत गंगा। हमारे परंपरा की बात है, सची देवी थे, सची देवी उनका नाम था, राजा का लड़की थी, इतना उनके मन में भरा गया है कि चले घर चलकर। और हमारे संप्रदाय से, गौड़ी संप्रदाय से दीक्षा ली, ब्रज में रहे, ब्रज में रहकर भागवत पढ़ती थी, बहुत सुंदर प्रवचन देती थी। और ठाकुर जी ने उनको बोले, ठीक है मैं 5 मिनट में करूँ विश्राम लेता हूँ आरती। तो सची माता ने, गुरु जी जब चले गए, सची देवी उनका नाम था, उनका नाम था सची देवी। सची देवी को कृष्ण ने साक्षात बोले, तुम इधर मत रहो ब्रजधाम में, तुम पुरी जाओ, और पुरी में रहना है, पुरी नहीं छोड़ना है। तो वो गए और पुरी में रहने लगी। और पुरी में जब भागवत पढ़ रही थी, उसी श्वेत गंगा के पास, वो भागवत जब पढ़ रही थी ना, राजा आए सुनने के लिए, इतना सुंदर भागवत बोलती थी कि सब राजा लोग आते थे सुनने के लिए। राजा ने छोटा लैंड दे दिया, जमीन दे दी, तुम इधर रहो कुटिया बना। वो बोले नहीं, कुटिया की क्या जरूरत है, वो रहने लगी उधर। लेकिन वो एक व्रत लिए थे, व्रत क्या है, क्षेत्र संन्यास। क्षेत्र संन्यास मतलब पहले जमाने में भक्त लोग ऐसे व्रत लेते थे, जिस क्षेत्र में रहते हैं ना वही क्षेत्र छोड़कर कहां नहीं जाते थे। सिर्फ इतना नहीं, क्षेत्र में जो चीज मिलता है, पैदा होता है गेहूं चावल जो है, बाहर का चीज नहीं भोजन करते, पहनना है वही क्षेत्र का चीज पहनना। जो पूरी में रहते थे ना, वो जगन्नाथ जी का प्रसाद, बस वही क्षेत्र में रहना है, क्षेत्र में जो साड़ी वगैरह जो भी मिलता है कपड़ा उसको पहनना है, बाहर नहीं जाना। वो क्षेत्र संन्यास ले लिए, संन्यासी बनते सची देवी। लेकिन एक बार उनका मन में इच्छा आया, मैं इतना दिन मैं बूढ़ी हो गया हूं लेकिन कभी गंगा में स्नान नहीं किया, सब साधु संन्यास लोग जा रहे हैं लेकिन मैं तो क्षेत्र संन्यास ले लिया, जाना तो विवर्जित है क्षेत्र छोड़कर। तो रात में वो सोई थी तो जगन्नाथ जी ने आए स्वप्न में, बोले तुमको जाना जरूरत नहीं है, रात 12 बजे तुम जाओ विश्वेत सरोवर, उधर नहाओ, उधर गंगा प्रकट हो, जाओ गंगा प्रकट हो जाओ नहा। सची देवी ने आए और जब नहाए तो एक डुबकी लगाई तो श्री मंदिर में जगन्नाथ जी के चरण कमल। देखिए कहां है ये, वो एक अलग सरोवर है और मंदिर कहाँ है, कम से कम तो कितना दूर होगा, 1/2 किलोमीटर, कम से कम 1/2 किलोमीटर। वो नहा है सरोवर में, वो डुबकी लगाई और वो इधर आई जगन्नाथ के चरण कमल मंदिर। और मंदिर में क्या वो देख रहे थे, घंटा, बहुत बड़ा घंटा आवाज हो रहा था, लोग कीर्तन कर रहे थे मंदिर में। रात 12 बजे जब हो हल्ला होने लगे तब चौकीदार लोग ने राजा को बुलाए, पंडा को बुलाए, देखो देखो मंदिर का भीतर हो हल्ला हो रहा है। तो जब वो लक खोले, ताला खोले तो देखे कौन है, सची देवी। पंडा लोग बोले ये तो सन्यासी है, वो भीतर क्यों था, शायद जगन्नाथ जी का कोई पैसा लेना के लिए, सोना बगरा लेने के लिए भीतर शायद, तब उनको लेकर जेल में डाल दिया। मंदिर का भीतर रात में वो थे ना, पकड़ लिए, उनको पता नहीं था कि जगन्नाथ जी लाए, तब एक दिन का बाद उसी रात में जगन्नाथ जी फिर राजा को स्वप्न दिए, तुम क्या बोल रहे हो, वो चोरी किए हैं, मैंने उनको लिया था मेरे चरण कमल, क्योंकि उनका एक संदेह था अगर मैं इधर नहाऊंगा गंगा इधर ऐसे कैसे प्रकट होंगे, मैं तो गंगा तो है वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में तो गंगा नहीं, बिहार में है वेस्ट बंगाल में, मैं तो उड़ीसा में नहाऊंगा तो इस सरोवर में नहाऊंगा ये पंड में, तो गंगा ऐसे कैसे प्रकट होंगे। तो मैं जब चरण कमल में ले गया तब उनको पता होना चाहिए कि मेरा चरण कमल से गंगा निकली थी। तो राजा ने पांव पड़कर छोड़ दिए, तब से उनका नाम पड़ा कि गंगा माता। अभी है ना छोटा आश्रम है गंगा माता गोस्वामी, गोस्वामी बोलते श्वेत सरोवर से श्वेत गंगा, तब से उधर गंगा प्रकट में कोई भी जाता है ना पंच तीर्थ में वो एक तीर्थ है, पहले कौन है चक्र तीर्थ, श्वेत गंगा और सरोवर स्वर्ग द्वार तीन और दो, ठीक है कल हम सुनेंगे, दो तीर्थ है और दो तीर्थ है उसका साथ जगन्नाथ जी का कई लीला है, बहुत लीला जगन्नाथ जी, ठीक है। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, राधा गोपीनाथ जी की जय, पंचरत्न नृसिंहदेव भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव की जय, संवेद भक्तवृंद की जय, नेताए को प्रमानंदे हरि।